आज है 22 अगस्त दिन शनिवार। स्वागत है आपका इंडिया बोल में, मैं हूं सुशीला सिंह। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों राजनेताओं को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने का आदेश दिया। सवाल ये कि सरकारी स्कूलों में क्या कमी है कि सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि आम लोग भी अपने बच्चों को वहां पढ़ाना नहीं चाहते। सरकारी स्कूलों में बच्चों को न पढ़ाने के पीछे की वजह पढ़ाई की गुणवत्ता है या फिर स्टेटस सिंबल। आज इसी मुद्दे पर होगी इंडिया बोल में बहस। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर। लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा स्तर की बातचीत आतंकवाद भरी पर ही केंद्रित होगी और अभी कश्मीर का मुद्दा बातचीत में शामिल नहीं होगा। रविवार को प्रस्तावित बातचीत से पहले दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जो भी बातचीत होगी उसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा और पाकिस्तान को शिमला समझौते की मूल भावना को बनाकर रखना होगा। अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि राजधानी काबुल के राजनयिक इलाके में अस्पताल के सामने एक जोरदार बम धमाका हुआ है। शुरुआती खबरों के मुताबिक इस धमाके में कम से कम 13 लोग घायल हुए हैं। धमाके वाली जगह एक भीड़भाड़ वाला रिहायशी इलाका है जो कि हवाई अड्डे के पास है। फ्रांस में भारी हथियारों से लैस एक शख्स ने एम्स्टर्डम से पेरिस जा रही एक हाई स्पीड ट्रेन में फायरिंग की। हमला करने वाले शख्स को 3 अमरीकी यात्रियों ने काबू में कर लिया। संदिग्ध बेल्जियम से ट्रेन में सवार हुआ था और उसके पास से एक असॉल्ट राइफल, बंदूक और एक चाकू बरामद हुआ है। फ्रांस के आतंक विरोधी दस्ते के अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है। देश के गृह मंत्री बर्नार काजनोव ने कहा, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि हमें संदिग्ध की पहचान को लेकर बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि उसकी पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। अगर वो जो कह रहा है वो सच है तो साबित हो जाएगा कि वो मोरक्को का रहने वाला है। स्पेन के अधिकारियों ने फरवरी 2014 में ऐसे ही एक संदिग्ध से पूछताछ की थी जो कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। फ्रांस के गृह मंत्री बर्नार काजनोव के शब्द। इस हमले के पीछे की वजह का तत्काल पता नहीं चल सका है लेकिन आतंक निरोधी जांचकर्ताओं ने पड़ताल शुरू कर दी है। पेरिस में जनवरी में एक बंदूकधारी द्वारा 17 लोगों की हत्या किए जाने के बाद से फ्रांस में हाई अलर्ट है। दक्षिण कोरिया की मीडिया का कहना है कि तनाव के बीच उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया बातचीत करेंगे। इससे पहले दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया ने अपनी तोपों को सीमा की तरफ भेज दिया है। इसका मकसद सीमा पर दक्षिण कोरिया के उन लाउडस्पीकरों को तबाह करना है जिससे दुष्प्रचार किया जाता रहा है। उत्तर कोरिया ने शनिवार दोपहर तक इन लाउडस्पीकरों को हटाने की समय सीमा तय की है और ऐसा न होने की सूरत में सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। फ्रांस के एक सांसद स्कूलों में शाकाहारी भोजन को शुरू करने की हिमायत कर रहे हैं ताकि जिन छात्रों के धर्म में पोर्क खाने की मनाही है उन्हें सहूलियत हो सके। ईव जैगो ने change.org वेबसाइट पर सभी स्कूलों में विकल्प के तौर पर शाकाहारी भोजन रखने को अनिवार्य बनाने की एक मुहिम शुरू की है। अभी तक उनकी अपील को 73,000 लोगों का समर्थन मिल चुका है। पिछले हफ्ते ही पूर्वी फ्रांस के एक स्कूल में पोर्क से बने व्यंजनों पर प्रतिबंध लगाने के बाद उन्होंने ये मुहिम शुरू की थी। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका इंडिया बोल में और जैसा कि आपने आज का विषय सुना, हम आपको पहले जरा इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बारे में बताना चाहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं, स्थानीय निकायों से जुड़े लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में भेजें। हाईकोर्ट का कहना था कि तभी ये लोग इन स्कूलों की जरूरतों को समझेंगे और देखेंगे कि अच्छी अवस्था में ये चले। ये आदेश जहां सरकारी स्कूलों की स्थिति को बताता है, वहीं ये भी सवाल उठता है कि क्यों सरकारी अधिकारी से लेकर चपरासी तक अपने बच्चे को निजी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। सवाल कई हैं, इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक डॉक्टर कृष्ण कुमार और मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि वो हमारे साथ बहुत थोड़े समय के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हम श्रोताओं से बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर।
हेलो
जी, कौन बोल रहे हैं?
जी मैं नंद किशोर सिंह बोल रहा हूँ, रामपट्टी डिस्ट्रिक्ट मधुबनी बिहार से।
जी नंद किशोर जी, आप क्या कहना चाहेंगे बताएं।
जी मेरा कहना है कि सरकारी स्कूलों में जो है सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, जिससे कि वो नहीं चाहते हैं, पैसे वालों नहीं चाहते हैं जो मेरा बच्चा वैसे संस्कार में रहे और वैसे संस्कार सीखे, और इसलिए उन्होंने पैसा के अभाव रहता नहीं है और वो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहता है। और खासतौर पर ये बात है कि हम देखते हैं अपने आस पड़ोस में कि सर्टिफिकेट के लिए सरकारी स्कूल में नाम लिखा देते हैं, लेकिन पढ़ाई चलता है प्राइवेट स्कूलों में। और इससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारी सुविधा जो है उससे नहीं मिल पाता है, इसलिए वो सरकारी स्कूल में नाम लिखवा देते हैं। और
तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती हैं।
जी जी
जी नंद किशोर जी, आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे कि आपके भी बच्चे होंगे, आप किस स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चे को?
मेरा कोई नहीं बच्चा।
अच्छा, आपके किस रिश्तेदार में किसी के बच्चे होंगे, आपने पढ़ाई की, तो आपके रिश्तेदारी में जो बच्चे हैं वो किस में जाते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं प्राइवेट स्कूल में जाते हैं?
ऐसे कहेंगे तो मेरा भी एक अंकल का लड़का है, वो प्राइवेट में जाता है, लेकिन नाम रहता है सरकारी में सर्टिफिकेट के लिए मात्र, सरकारी मान्यता प्राप्त है सरकारी स्कूलों में, इसीलिए सर्टिफिकेट के लिए, और पढ़ता है प्राइवेट स्कूलों में।
मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि सरकारी स्कूलों में किस तरह की शिक्षा दी जाती है, क्या आप मानते हैं कि बहुत अच्छा स्तर है शिक्षा का वहाँ पर?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिहार में तो बात किया जाए तो सरकारी स्कूलों में बिल्कुल नहीं पढ़ाई है,
पढ़ाई नहीं है। और जी आपसे अगर जाना चाहे, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहेंगे?
जी मैं भी चाहूंगा कि हालात को देखते हुए कि सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ाऊंगा, जबकि स्कूल ही नहीं सही है, नहीं तो टाइम पे खुलता है, नहीं तो टाइम पे बंद होता है, जब रोज मीटिंग है तो आज ये है वो है, मतलब बहुत तरह की बात होती है सरकारी स्कूलों में।
जी नंद किशोर जी, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 1800 पे हमारे साथ कौन है।
मैं कारूलाल भगवत, गाँव झांकेड़ा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ।
जी आपका नाम क्या हुआ?
कारूलाल भगवत।
कारूलाल जी, हाँ बताइए कारूलाल जी।
ये जैसे सरकारी स्कूलों में जो भी टीचर्स आते हैं, मास्टर लोग आते हैं पढ़ाई के लिए, वो उनकी डिग्री कंप्लीट होती है तब कुछ अच्छा होता है, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्थाएं देखते हुए ये पालक लोग संतुष्ट नहीं होते और ये प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान करते हैं। और ये हाईकोर्ट का जो फैसला है बहुत ही बढ़िया है, जैसे प्रिंसिपल लोगों के पोते हैं बेटे हैं सभी प्राइवेट में जा रहे हैं, और गरीब आदमी भी यही चाहता है कि मैं भी प्राइवेट में पढ़ाऊं, बाकी वो प्राइवेट स्कूल फीस नहीं दे पाता है
जी।
उसकी ये मजबूरी रहती है कि वो सरकारी स्कूल भेजता है
जी, तो पर वो भी चाहता है, गरीब भी चाहता है, आपका ये कहना है कि वो भी अपने बच्चे को निजी स्कूलों में पढ़ाए। कारूलाल जी अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर डॉक्टर कृष्ण कुमार को अपनी बातचीत में शामिल करना चाहेंगे। कृष्ण जी, सरकार ने शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों से जोड़ दिया है, और साल 2009 में जो है शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया। हम सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर पर बात करेंगे आगे, लेकिन पहले मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर बातचीत करना चाहूँगी आपसे कि ये बच्चे किस स्कूल में पढ़ें, ये अभिभावक से क्यों जोड़ के देखा जा रहा है, ये बच्चे की जो है फ्यूचर का सवाल है, भविष्य का सवाल है, वो देखा जाना चाहिए कि वो सरकारी में पढ़ना चाहते हैं तो सरकारी में पढ़े या प्राइवेट में पढ़ना चाहते हैं तो प्राइवेट में पढ़े। अब वो सरकारी अधिकारी का बच्चा है इसीलिए सरकारी स्कूल में ही पढ़े, ये कहाँ तक आपको तर्क सही दिखाई देता है?
देखिए 6 वर्ष का बच्चा अपने जीवन को लेकर कोई निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए हाई कोर्ट ने एक इस किस्म का निर्णय लिया कि बच्चे को किस स्कूल में भेजा जाए ये तय करने की जिम्मेदारी चूंकि माता पिता की है, और इसलिए वो लोग जो कि सरकार की सेवा में लगे हैं किसी भी पद पर हैं वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को भेजें। इस दृष्टिकोण से ये एक कानूनी फैसला काफ़ी रोमांचक फैसला है और ये दिखाता है कि समाज का किस हद तक विभाजन हो चुका है, शिक्षा स्वास्थ्य दोनों में बहुत ज़्यादा विभाजित हो चुका है भारत का समाज। तो इसलिए एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग है जो कि कोर्ट के फैसले से संभव लगती है, बशर्ते कि उत्तर प्रदेश सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील ना करे बल्कि इसको इस पर अमल करने की तैयारी करे जैसा कि कोर्ट ने कहा है। एक बहुत बड़ी चीज़ होगी पूरे भारत के लिए, धीरे धीरे एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। अब
तो आपको लगता है कि अगर सरकारी अधिकारियों से या राजनेताओं से ये पहल शुरू होगी तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रही है उससे बदलाव आएगा?
देखिए 60-70 के दशक में जब प्राइवेट स्कूल नहीं थे तब जिला मजिस्ट्रेट का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता था और इसलिए कोई छत अगर टपकती हो तो वो एक दो दिन के अंदर उसकी मरम्मत हो जाती थी, अगर कुर्सियां टूटी हों तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती थीं, अध्यापकों की नियुक्तियां समय पे होती थीं। आज स्थिति यह है कि पूरा का पूरा मध्य वर्ग सरकारी स्कूल को छोड़ चुका है।
मध्य वर्ग क्या, निचला वर्ग भी मैं कहूंगी कि जो है सरकारी स्कूलों को छोड़ चुके हैं, उनकी भी कोशिश रहती है कि प्राइवेट स्कूल में ही उनका बच्चा पढ़े।
जी हाँ सर, एक नजरिया पूरे समाज में बन चुका है कि चाहे पानी हो और चाहे स्वास्थ्य हो और चाहे शिक्षा हो, हर चीज़ में सरकार का काम बुरा है और प्राइवेट अच्छा है। प्राइवेट स्कूलों की परिस्थितियां भी बहुत ख़राब हैं, अगर आप कई रिपोर्ट्स देखें तो देखेंगी कि आपके या मेरे दिमाग में जो चंद नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल हैं उनकी वजह से हमारे दिमाग में एक बड़ी अच्छी तस्वीर है, लेकिन जो एक साधारण प्राइवेट स्कूल है जो 50 रुपये फीस लेकर गाँव में बच्चों को पढ़ा रहा है, वहाँ के शिक्षक का स्तर दरअसल सरकारी स्कूल के शिक्षक के अपने शिक्षा के स्तर से बहुत नीचा है, जैसा आपके एक श्रोता ने अभी कहा भी।
हाँ,
लेकिन व्यवस्था इतनी ख़राब है सरकारी स्कूल की, उस पर तवज्जो नहीं दी जाती है उसकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए, और इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर उनकी एक स्टेक होगी सरकारी अधिकारियों के अपने बच्चे वहां पढ़ेंगे तो उन्हें मालूम तो चलेगा कम से कम
जी।
तो ये चीज़ वही है जैसे आप कहें कि अगर सरकारी अधिकारी बसों में सफ़र करने लगें तो बसों की व्यवस्था ठीक हो जाए
जी।
हाँ, उसी किस्म का ये तर्क है और इसमें कुछ भी विचित्र नहीं है, बहुत ही एक नेक तर्क है, बशर्ते कि समाज इसको सुनने के लिए तैयार हो और सरकारें स्वयं सुने
जी, और इसे लागू किया जाए,
इसे लागू किया
जाए, सरकारी अधिकारी और राजनेता इस पर अमल करें जी। हम यहाँ पर मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल पूछना चाहेंगे। आपने अभी डॉक्टर कृष्ण कुमार को सुना उपेंद्र जी, आप अगर भारत की मैं तस्वीर पेश करूँ, आप भी स्कूल मंत्री हैं, शहरों की बात छोड़िए गाँव कस्बों में भी प्राइवेट स्कूल जो हैं हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे, और कोई भी अधिकारी से लेकर छोटा किसान मजदूर जो हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाहता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी पूरी स्कूली शिक्षा प्रणाली पर सवाल नहीं उठाता है?
निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है, अब शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न जरूर खड़ा करता है। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जवाबदेही विशेष रूप से राज्यों के ऊपर है जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है। तो यह बात ठीक है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं है जहाँ लोग इच्छा से अपने बच्चों को वहाँ भेजने का काम करें।
लेकिन ऐसा क्यों उपेंद्र जी, क्यों ऐसा क्यों है, यहाँ ये जानना चाहेंगे।
आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है
जी। हाँ, यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है कि जो सरकारी स्कूल का जो स्तर है वो गिरता ही चला जा रहा है, क्यों अभिभावक जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में अब नहीं पढ़ाना चाहते हैं?
अभिभावक नहीं पढ़ाना चाहते उसका तो स्पष्ट कारण है कि उनको लगता है कि सरकारी विद्यालयों में उनके उनके बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं मिल पाएगी, शायद प्राइवेट में भेजे तो वहाँ शिक्षा मिल पाएगी। यद्यपि ऐसी धारणा बन गई है लेकिन यह बहुत सही भी नहीं है, प्राइवेट विद्यालय में भी सब जगह बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही हो ऐसा नहीं है, लेकिन सरकारी विद्यालयों के बारे में एक धारणा बन गई है। सरकारी विद्यालय भी बहुत सारे ऐसे हैं जहां बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और प्राइवेट विद्यालयों से अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन सामान्य तौर पर जो गाँव में है सरकारी स्कूल उसमें उसका स्तर बहुत अच्छा नहीं है, यह बात भी बिल्कुल
जी। उपेंद्र जी, हम कुछ कॉलर्स को लेना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ श्रोता लाइन पे जुड़े हुए हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ अभी 1800 पे जुड़ा हुआ है।
जी मैम, हम अरबाज बोल रहे हैं।
अरबाज
मछली सर, जी डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से। हमारा ये कहना है कि मैम हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि सरकारी कर्मचारी या उनके बड़े अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन ये फैसला अगर हाई कोर्ट सरकार को देती तो ज्यादा अच्छा होता कि वो अपने सरकारी स्कूल की गुणवत्ता में सुधार करे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में चाहे उच्च वर्ग के विद्यालय हों उसमें सिलेबस एक नहीं है। पता चला कि केंद्रीय विश्वविद्यालय या मदरसा या इंग्लिश मीडियम वहाँ सिलेबस कुछ है, फिर राज्य सरकार सिलेबस कुछ है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि पूरे भारत में समान शिक्षा का अधिकार, जिसे मंडल आयोग ने बनाया गया जब 1964-66 में, समान शिक्षा का अधिकार उसमें बताया गया कि समान शिक्षा का अधिकार हो, तो ऐसा सिलेबस भारत में क्यों नहीं बन रहा है कि जो किताबें केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही है या जो जो किताबें पढ़ाया जा रहा है वो प्राथमिक स्कूल में पढ़ाया जाए, शिक्षा में समान किताब क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है।
जी बहुत अच्छा सवाल है आपका, आपको आपसे पूछना चाहेंगे कृष्ण कुमार जी कि ऐसा क्यों नहीं है कि पूरे भारत में एक तरह का सिलेबस हो, प्राइवेट कुछ अलग पढ़ाएगा, सरकारी स्कूल कुछ अलग पढ़ाते हैं, इस तरह का क्यों है भारत में?
देखिए हमारे श्रोता काफी उलझ गए हैं इस मुद्दे पर। अव्वल तो ये सही नहीं है कि पाठ्यचर्या में बहुत ज़्यादा फर्क हैं, लेकिन पाठ्यपुस्तक के स्तर पर कई फर्क दिखाई देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयं पाठ्यपुस्तकें बनवाती है, वो एनसीईआरटी किताबें खर्च नहीं करती।
ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम भी अलग होते हैं
राज्य के, ये उसका निर्णय है और राज्यों को संविधान ने ये पूरा अधिकार दिया है कि वो अपने राज्य में शिक्षा की व्यवस्था खुद करें, स्कूली शिक्षा पूरी तरह उनके हाथ में है, तो इसलिए राज्यों से ये अधिकार तो नहीं लिया जा सकता। दूसरा मसला ये भी है कि भारत जैसे विविध देश में एक जैसी पाठ्यचर्या पूरे देश में लागू करना कितना तर्कसंगत होगा, लेकिन एक फ्रेमवर्क की तरह से कोशिश की गई है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 में ये कोशिश की गई कि जहाँ तक गुणवत्ता का सवाल है उस दृष्टि से हर राज्य में जो शिक्षा दी जा रही है वो तुलनीय हो, कोई ऐसा ना हो कि कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, कहीं कुछ कम पढ़ाई जा रही हैं, तो इसलिए उस दृष्टिकोण से नीति वहाँ तक पहुँची है। लेकिन हमारे श्रोता शायद इस बात से इतफाक रखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जैसे अंग्रेजी माध्यम पाठ्यपुस्तकें खर्च की जाती हैं, जबकि सरकारी स्कूल प्राय
हिंदी होती है,
मातृभाषा का इस्तेमाल
तो एक, एक अंतर तो आ ही जाता है बच्चे के उसमें। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो बच्चा शहर में भी पढ़ के आ रहा है और जो गांव में भी पढ़ के आ रहा है वो उसी तरह के कॉन्फिडेंस से शहर में आए, अगर गांव का बच्चा आता है जितना शहर के बच्चे में कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी तो कम होता है उससे, क्योंकि वो एक भाषा को कम जानता है। तो अगर एक पाठ्यचर्या की आप जो बात करें कि कोशिश हो रही है, अगर लागू किया जाता है तो उसमें क्या परेशानी है?
देखिए ये अंग्रेजी का मसला तो फिर भी रहेगा, ये सवाल हम इतनी नादानी से आज नहीं पूछ सकते। हमें पता है हमारे देश में किस तरह की धारणाएं काम कर रही हैं और अंग्रेजी की एक हवा बह रही है। अब सरकारी स्कूल अंग्रेजी माध्यम का हो जाए, अगर आप ये कह रही हैं तो ये एक अलग ही मसला हो
जाएगा। मैं माध्यम नहीं कह रही हूँ, मैं वो कह रही हूँ कि बराबर शिक्षा मिले। अगर आप प्राइवेट का कहें तो सिलेबस कहीं बहुत ज्यादा अप होता है उनका, अगर आप सरकारी स्कूलों से उसको उसकी तुलना करें तो।
नहीं, ये भी एक धारणा है आपकी। देखिए सिलेबस बहुत कम ज्यादा होने का प्रश्न नहीं है, सवाल यह है बच्चा किस तरह सीखता है, कितना सीख सकता है, इसके लिए सिलेबस से
ज्यादा। तो ये कौन मानक तय करेगा कि कितना बच्चा, पहली का बच्चा जो है सरकारी स्कूल का जो सिलेबस है या प्राइवेट स्कूल का जो सिलेबस है, उसमें आप देखिए जमीन आसमान का अंतर दिखाई
देगा। नहीं, ये अंतर आपको दिखता होगा, जमीन आसमान का अंतर नहीं है। अंतर अगर है तो व्यवस्था का है, अध्यापक की नियमितता का है, स्कूल के खुलने बंद होने का है, अध्यापकों की नियुक्ति का है। आज देश के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बहुत से स्कूल एक दो शिक्षकों के भरोसे पांचवीं तक की पढ़ाई करवा रहे हैं। कैसे संभव है कि दो शिक्षक या एक शिक्षक पांचों क्लास पढ़ा ले? प्राइवेट स्कूलों में ऐसा नहीं है, आप कहीं कम तनख्वाह पे वहां टीचर रखते हैं और हर क्लास के लिए एक टीचर होता है, तो इसलिए वो सिलेबस पूरा कर पाता है। लेकिन सरकारी स्कूल का सिलेबस लगातार मेहनत ही करता रहता है, 10 तरह के और काम सरकार उससे कराती है, जो पूरा भवन की व्यवस्था है, तमाम और चीज़ें हैं, एकदम लचर होती हैं। इस हालत में जाहिर है कि वो उस तरह का काम नहीं कर पाता और उसकी जवाबदेही भी वैसी नहीं बन पाती। माता पिता को लगता है कि प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की, हेडमास्टर की जवाबदेही ज्यादा होगी। तो एक तरफ धारणाओं का सवाल है, दूसरी तरफ ये सच है।
उपेंद्र जी भी कह रहे थे कि धारणा भी एक बनी हुई है।
लेकिन दूसरी तरफ ये सच है कि सरकारें अपने स्कूलों को ठीक से नहीं रख पा रही हैं, और खासकर हिंदी राज्यों की सरकारें, अगर कर्नाटक या तमिलनाडु की सरकारों की तरफ गौर करें
जी,
तो वो देखेंगी
वहाँ शिक्षा का स्तर ज्यादा अच्छा दिखाई देता है जी।
इसमें आपकी वो बात लागू होगी कि हाँ, जमीन और आसमान जैसा अंतर दिखाई देता है कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के अंतर में। और ये सवाल हमको पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि कर्नाटक की सरकार अपने स्कूलों की देखरेख कर लेती है,
वो भी सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं।
जी हाँ, सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं कि वहाँ यूं ही किसी के दबाव से अध्यापक का तबादला नहीं होता, जबकि हम स्कूल का भवन बेहतर हालत में होता है, पानी से लेकर पाठ्य पुस्तकों हर चीज़ की व्यवस्था होती है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें आपको एक सपना लगती हैं। इसी सपने
और भी स्कूल जो है, हम लोग नॉर्थ की बात करें जी, इस पे बातचीत करेंगे। एक
बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तीन सबसे खराब स्थिति वाले राज्य हैं, और इनकी साथ में छत्तीसगढ़ और झारखंड को भी शामिल कर लीजिए, तो देश का ये इलाका निकल आएगा जो शिक्षा के आंकड़ों की दृष्टि से सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ
है।
तो हमारे सामने सवाल ये होना चाहिए कि ये हिस्सा क्यों इतना ज्यादा खराब है। जी
जी, हम अगली कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जी। कौन बोल रहे हैं?
जी, मैं मोहम्मद गुफान अंसारी बोल रहा हूँ।
जी मोहम्मद साहब, बताइए।
जी सर, मैं मोहम्मद गुफान, मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट जो जिस तरह से फैसला दिया है, वो इलाहाबाद जैसे हाईकोर्ट जो फैसला दिया है, ये पूरा देश में मतलब लागू किया जाए। शिक्षा विभाग बहुत चौपट है, मतलब कि वो जो बैठे हुए हैं ऊपर, जो मतलब कि सरकारी ये नौकरी करते हैं, वो जो है ये मतलब कि सरकारी स्कूल को इन दृष्टि से देखते हैं, ये अपना बच्चा को मतलब इस स्कूल में नहीं डालना चाहते हैं, ये सोच नहीं डालना चाहते कि ये सरकारी स्कूल में मतलब कि ठीक से पढ़ाई नहीं होता है। जी मैडम
जी, तो अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जी। कौन बोल रहे हैं? लगता है इन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही है। जी सुभाष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कहना चाहेंगे आप पूरी बहस सुन रहे हैं?
हाँ जी, हाँ जी, बहुत गौर से सुन रहा हूँ मैं। कृष्ण कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को मेरा नमस्कार
जी।
मेरा ये कहना है कि पहले तो जैसे कृष्ण कुमार जी पहले बीबीसी पर आए थे, तो मैंने उनको एक बार सुना था कि मानविकी विषय में हमारा आधार कम होता जा रहा, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी और विज्ञान के जो विषय उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है। पहली बात तो पेरेंट्स इसलिए उधर जाना चाहते कि हम एक नागरिक की बजाय डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करना चाहते। दूसरी बात ये रही कि अगर सरकारी विद्यालयों में वन क्लास वन टीचर की व्यवस्था हो, तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा सुधार होगा, जैसा कृष्ण कुमार जी ने अभी उठाया। दूसरी बात जो उन्होंने मानसिकता की बात की कि अंग्रेजी दा हमारी एक मानसिकता बन गई है, कर्नाटक और तमिलनाडु का जिक्र किया, तो हिंदी भाषी राज्य जैसे हरियाणा का मैं जिक्र करूंगा, यहाँ की एचएस की परीक्षा सिर्फ इंग्लिश मीडियम में, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं सालती है कि कहीं ना कहीं जब भी हमें अंग्रेजी का तवज्जो आती है, केंद्रीय विद्यालय में हम भर्ती होने जाते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, जेएनवी में भर्ती होने जाते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, तो हिंदी भाषी राज्यों का एक विद्यार्थी है वो स्वयं को हीन पाता है, जैसा कृष्ण कुमार जी कह चुके हैं। और सरकारी विद्यालय में हमारे यही होता है कि प्रकार का कन्वर्सेशन इंग्लिश में नहीं हो पाता है, क्योंकि हम सिर्फ एक विषय पढ़ते हैं, और वो भी पहले छठी से लेकर पढ़ा कर देते हैं प्राथमिक।
थोड़ा सा अपनी संक्षेप में बात करिए, क्योंकि समय अभी बहुत कम है और भी कॉलर्स को लेना है। सुभाष जी,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वन क्लास वन टीचर की व्यवस्था हो, दूसरा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो मॉनिटरिंग आज होती है बीओ और डीओ द्वारा होती है, डीडब्ल्यू द्वारा होती है, अगर सभी अधिकारी वर्ग के बच्चे यहाँ आने लगेंगे तो मॉनिटरिंग की एक व्यवस्था सुधरेगी, और कहीं न कहीं विद्यालय की जो समिति है, जो व्यवस्था है, सुधार में एक महत्वपूर्ण योगदान होगी। आज एक प्राइवेट जो स्कूल है उसमें पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं और बच्चों की कॉपी चेक करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में मजदूर वर्ग के बच्चे होते हैं, ना तो वक्त दे पाते हैं, और अगर किसी अधिकारी के कर्मचारी के बच्चे आएंगे तो कहीं न कहीं स्तर की भी गुणवत्ता आएगी।
जी, स्तर सुधरेगा, जैसा कि कृष्ण कुमार जी भी कह रहे थे, ये अनुपात की बात करें जो हम कार्यक्रम में चर्चा भी कर रहे थे, कि अगर हम लोग श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में 24 बच्चे हैं एक टीचर पर, चाइना में 17 बच्चे हैं, और बांग्लादेश में 40 का आंकड़ा, और भारत की बात की जाए तो 35। तो क्या ये अनुपात का भी असर पड़ता है कि एक टीचर पर 35 अगर बच्चे हैं तो उससे शिक्षा पर असर पड़ता है?
नहीं, असर तो पड़ता है, लेकिन ये जो आंकड़े आप दे रही हैं ये औसत आंकड़े हैं
जी, ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े मैं बता रही हूँ आपको।
तो ये अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे बिहार को लेकर कोई आंकड़ा बनाएं तो उसका मायना खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव और शहर में बहुत ज्यादा फर्क हो गया है, और गांव से अध्यापक अपना तबादला करवा लेता है राजनीतिक दबाव डलवा के, इसलिए गांव के स्कूल में आप जाएंगी तो आपको एक आध दो टीचर मिलेंगे, और बच्चों की संख्या भी घट गई है क्योंकि बच्चे वहां से गांव में भी प्राइवेट स्कूल खुल गया है। तो ये जो बात अभी आपके श्रोता सुभाष जी कह रहे थे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ऑर्डर का एक ही आशय है कि सरकारी अधिकारी स्टेक होल्डर बन जाए
बिल्कुल
जी हाँ। तो उसके बाद वो चीजें अपने आप सुधरेंगी, देखेगा वो, और कोई बहुत ऐसा कोई क्रांतिकारी आदेश भी नहीं है। वो केवल 5 कक्षाओं तक की बात कर रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल में अगर सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे जी हाँ, तो सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी, एकता भी बढ़ेगी और स्कूलों
और शिक्षा की गुणवत्ता भी उसमें निकल के आ रहा है।
क्योंकि अधिकारी, चाहे वो पुलिस का कांस्टेबल हो और चाहे वो जिले का कोई अधिकारी हो, उस या सरपंच हो या MLA हो, उसके बच्चे की उपस्थिति से अध्यापक की तैनाती, नियुक्ति, स्कूल की साफ सफाई, हर चीज पर असर पड़ेगा।
जी, अब साफ सफाई और ड्रॉपआउट्स की हम लोग बात करते हैं कि जिस तरह से देखा जाता है कि 6 से 14 साल की उम्र के बाद जब बच्चे आते हैं, तो 14 साल की उम्र के बाद बच्चों की, जो अगर लड़कियों की बात की जाए, तो संख्या गिरती चली जाती है। हालांकि एक NGO है प्रथम, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, उसका ये कहना है कि अब ढांचागत सुविधाएं जो है उनमें सुधार आया है कि टॉयलेट्स हुए हैं, पानी की सुविधाएं हो रही हैं। तो ये ड्रॉपआउट्स क्यों हो रहे हैं, क्या कहाँ कमी कहाँ नजर आ रही है आपको?
नहीं, देखिए ये मसला भी बहुत जटिल है और प्रथम का सर्वेक्षण अपनी विधि के कारण कई जटिलताओं को उभारने में असमर्थ है। आज भी ध्यान रखिए कि बंगाल से लेकर के राजस्थान की पूरी पट्टी पर 6ठी के बाद से ही लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर एकदम बढ़ जाती है। इसके कई सांस्कृतिक सामाजिक कारण है। गरीबी लगातार इन राज्यों में बनी हुई है, बच्चों से श्रम करवाया जाता है, वो परिस्थितियां मनरेगा के बावजूद सुधरी नहीं है, मनरेगा भी इस समय कमजोर पड़ रहा है, इस कारण कई और विषमताएं पैदा हो गई हैं। तो इसलिए ड्रॉपआउट रेट को पूरी तरह अब आप स्कूल से नहीं जोड़ सकते, उसको आपको एक,
उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि लड़कियों को जैसे टॉयलेट्स की जो है वो सुविधाएं नहीं मिलती है, वो भी एक बड़ा कारण है लड़कियों का। जी उपेंद्र जी हमसे जुड़ चुके हैं दोबारा, और यहाँ ये जानना चाहेंगे उपेंद्र जी की सर्व शिक्षा अभियान की बात अगर हम करें तो उसमें कटौती की गई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इससे असर नहीं पड़ेगा?
नहीं, इससे असर नहीं पड़ेगा। उसमें भारत सरकार क्या मदद करती है राज्यों को एक अलग विषय है, लेकिन राज्य की सरकारें अगर विशेष रूप से गौर करेंगी जो वहाँ की समस्याएं हैं, तो कोई बहुत असर इस कारण से उस पर नहीं पड़ेगा।
आप क्या कहना चाहेंगे कृष्ण जी? ये तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल जो है असर ऐसा नहीं पड़ेगा सर्व शिक्षा अभियान, हालांकि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत आप जानते हैं कि दी गई थी कि सब बच्चों को पूरा शिक्षा का अधिकार मिले। जी
मैं मंत्री महोदय से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। उसका कारण यही है कि शिक्षा का अधिकार कानून संसद ने बनाया है, भारत का ये पहला शैक्षिक कानून है बच्चों की शिक्षा में जो संसद से पारित हुआ
जी,
और इसी भरोसे के साथ पारित हुआ कि केंद्र सरकार इस कानून पर अमल के लिए भरपूर मदद जारी रखेगी आने वाले कई दशकों तक। अभी जुमा 5-6 साल हुए हैं और अभी से
इसको लागू हुए
जी,
और अगर अभी से ही कटौती भी कर दी
जी, अभी से केंद्र सरकार अगर अपना हाथ खींचने लगी तो आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में परिस्थिति बद से बदतर होती जाएगी, क्योंकि ये राज्य सरकारें पहले से बहुत पीछे चल रही हैं और यहाँ शिक्षा का मूल्य समझने वाले लोग नहीं है इन राज्य सरकारों में। इसलिए केंद्र का बहुत गहरा दखल बना रहे, ये बड़ा जरूरी है।
जी, केंद्र का दखल बना रहे। उपेंद्र जी आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, समय बहुत कम है, आप स्कूली मंत्री हैं, ये बताइए कि जल्दी से कि क्या आप कदम उठाएंगे कि स्कूली शिक्षा में सुधार आए, वो भी सरकारी स्कूलों की, और लोग बच्चे जो लोग प्राइवेट स्कूल का रुख ना करें।
देखिए, सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था ठीक ठाक हो, सुधार हो, इसके लिए निरंतर भारत की सरकार कोशिश भी कर रही है। लगातार जहाँ भी शिक्षकों के पद खाली हैं उनको कैसे भरा जाए, जो शिक्षक भरे जाएं बिल्कुल ट्रेन टीचर हों, इस तरह से बाकी जो कुछ भी किया जा सकता है वहाँ शिक्षा की व्यवस्था में सुधार के लिए
कदम उठाए जा रहे हैं। जी, कदम उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद आपका उपेंद्र जी। आपके पास 15 सेकंड है कृष्ण जी, जल्द आप बताइए जल्दी से।
मैं तो ये कहूंगा, देखिए कि इधर के 4-5 वर्षों में लगातार एक स्थिरता आ रही है और कार्यक्रमों में जो उमंग थी 2008-09 तक दिखाई देती थी वो लगातार अब घट रही है, और ये काफी बड़ी समस्या है और इसलिए केंद्र सरकार को चेतना होगा।
केंद्र सरकार को चेतना होगा। हमारे साथ इंडिया बोल में शामिल हुए आज डॉक्टर कृष्ण कुमार और मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा स्तर की बातचीत आतंकवाद पर ही केंद्रित होगी। अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि राजधानी काबुल में जोरदार बम धमाका हुआ है जिसमें 13 लोग घायल हो गए हैं। फ्रांस में भारी हथियारों से लैस एक शख्स ने एम्स्टरडैम से पेरिस जा रही हाई स्पीड ट्रेन में फायरिंग की जिसे 3 अमरीकी यात्रियों ने काबू कर लिया, लेकिन अभी तक उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ इंडिया बोल में आज बस इतना ही। नमस्कार।